जीवन के लिए सत्य सितंबर 30। एक मन, एक उद्देश्य, एक आत्मा। मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। फिलिप्पियों अध्याय 2:2-3। हालांकि यह निश्चित रूप से लाभदायक है कि कलीसिया के सदस्य सेवा कार्यों में पहल करें, फिर भी विश्वासियों की एक स्वस्थ मंडली व्यक्तिगत विचारों और योजनाओं द्वारा नहीं चलती। यदि कलीसिया को वास्तव में मसीह की अधीनता में रहना है तो पहले हमारे मन सुसमाचार में एकजुट होने चाहिए। यदि यह एकता नहीं है तो हम अपने स्वार्थ और प्रतिस्पर्धात्मक इच्छाओं और योजनाओं द्वारा ही संचालित होंगे। बाइबल हमारे मन के विषय में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब हम अपने मन को सही सोच के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तब हम ठीक से प्रेम करना और एक आत्मा तथा एक उद्देश्य में साथ मिलकर सेवा करना सीखते हैं। हमारे मानसिक संघर्ष का एक भाग हमारी पुरानी स्वार्थी मानवीय प्रवृत्ति में फंसा हुआ होता है। हमारी सबसे बड़ी ठोकरों में से एक घृणा नहीं बल्कि आत्म प्रेम होता है। हम घमंड की प्रवृत्ति रखते हैं, जो हमारे प्रभु के स्वभाव के पूर्णतः विपरीत है, और हमारी नम्रता की कमी हमारे आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य के अनुभव में बाधा बनती है। यहाँ तक कि हमारे अच्छे कार्य भी अक्सर दूषित उद्देश्यों से भरे हुए होते हैं। यदि हमें मसीह में एक होना है तो हम अपने ही तरीके पर अड़े नहीं रह सकते। इसके विपरीत हमें एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना सीखना होगा। इसका अर्थ है कि हम अपने से पहले दूसरों की अच्छाइयों को याद करें, कि हम पहले यह सोचें कि दूसरों के लिए क्या अच्छा होगा, बजाय इसके कि हमारे लिए अधिक क्या सुविधाजनक होगा, और यह कि हम दूसरों के जीवन और संघर्षों में भाग लेने को तैयार हों, बजाय इसके कि उनसे दूर खड़े रहें। सच्ची नम्रता कभी सबसे आगे वाली सीट नहीं लेती या हर बात का आरंभ मैं से नहीं करती। वास्तव में यह वह शून्यता है जो परमेश्वर को उसकी सामर्थ्य दिखाने के लिए स्थान देती है। पौलुस हमें बताता है कि यह वह गुण है जो स्वयं यीशु मसीह में था। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें और उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। रोमियो अध्याय 15:2-3। जब हम पहले अपने बारे में सोचते हैं तब परमेश्वर के वचन को लागू करना कठिन हो जाता है, बल्कि असंभव हो जाता है। लेकिन जब हम दूसरों को पहले रखना सीखते हैं तब हम उनके हितों की चिंता करने के लिए अधिक तत्पर हो जाते हैं, और ऐसा करके हम मसीह की देह में वास्तव में एक हो जाते हैं। आप निश्चित ही कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके जीवन में यह आत्मिक नम्रता दिखाई देती है। उनके लिए अभी परमेश्वर का धन्यवाद करें और यह प्रार्थना करें कि आप देख सकें कि कैसे आप उनके उदाहरण का और सबसे बढ़कर स्वयं मसीह के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं। उसने आपकी जरूरत को अपनी सुविधा से अधिक, यहाँ तक कि अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण समझा। पौलुस की हम सबके लिए यह चुनौती है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिप्पियों अध्याय 2:5।